नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नाट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। फंडामेंटल्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर सेकंड एडिशन नीरफोर्ड और मार्क रिचर्ड्स की सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पर व्यावहारिक विश्लेषणात्मक पुस्तक है। इसका उद्देश्य किसी एक भाषा, फ्रेमवर्क या क्लाउड प्रदाता की विधि सिखाना नहीं, बल्कि उन विचार प्रक्रियाओं को स्पष्ट करना है जिनसे बड़े और बदलते सॉफ्टवेयर तंत्रों की संरचना तय की जाती है। यह संस्करण पहले संस्करण को अद्यतन करते हुए मॉड्यूलर मोनोलिथ, इवेंट ड्रिवन प्रणालियों, डेटा, टीम टोपोलॉजी, क्लाउड और जेनरेटिव एआई जैसे समकालीन संदर्भ जोड़ता है। पुस्तक आर्किटेक्ट की भूमिका को केवल उच्च स्तरीय डिजाइन बनाने तक सीमित नहीं मानती। इसके अनुसार आर्किटेक्चर में गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं की पहचान, विकल्पों के बीच ट्रेड ऑफ का मूल्यांकन, कंपोनेंट सीमाओं का निर्धारण, निर्णयों का संप्रेषण और टीमों के साथ शासन भी शामिल है। शैली और पैटर्न के विस्तृत सर्वेक्षण के साथ लेखक मापनीयता, जोखिम विश्लेषण और व्यावहारिक निर्णय लेने पर जोर देते हैं। इसलिए यह पुस्तक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को निश्चित नियमों के संग्रह के बजाय निरंतर बदलती बाधाओं के बीच अनुशासित इंजीनियरिंग निर्णय के रूप में प्रस्तुत करती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिजाइन की वास्तविक कसौटी मानना। पुस्तक का मूल आग्रह है कि आर्किटेक्चर का चुनाव केवल कार्यात्मक सुविधाओं से नहीं होता। दो प्रणालियां एक जैसे उपयोगकर्ता कार्य पूरे कर सकती है, फिर भी उनके आर्किटेक्चर अलग होंगे, क्योंकि प्रदर्शन, सुरक्षा, विश्वसनीयता, स्केलेबिलिटी, तैनाती की सरलता, लागत और परिवर्तनशीलता जैसी आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है। लेखक पहले इन गुणों को परिभाषित करने, फिर हितधारकों से उनकी प्राथमिकता और स्वीकार्य सीमा स्पष्ट करने की आवश्यकता बताते हैं। उदाहरण के लिए, तेज रिलीज की जरूरत मॉड्यूलरिटी और स्वचालित तैनाती को अधिक महत्व दे सकती है, जबकि अत्यधिक स्थिर लेन देन व्यवस्था स्थिरता, डेटा अखंडता और परिचालन नियंत्रण को प्रमुख बना सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हर गुण को अधिकतम करना संभव नहीं होता। बेहतर सुरक्षा अतिरिक्त प्रक्रियाएं ला सकती है, कम विलंबता महंगी अवसंरचना मांग सकती है और अत्यधिक स्वतंत्र सेवाएं परिचालन जटिलता बढ़ा सकती है। इसीलिए पुस्तक माप और शासन को महत्वपूर्ण मानती है। आर्किटेक्चरल लक्ष्य केवल प्रस्तुति की स्लाइड में लिखे कथन नहीं रहने चाहिए, बल्कि ऐसे संकेतकों और तकनीकी नियमों से जुड़े होने चाहिए जिनकी जांच की जा सके। यह दृष्टिकोण बहस को व्यक्तिगत पसंद से हटाकर स्पष्ट प्राथमिकताओं, प्रमाण और स्वीकार किए गए ट्रेड ऑफ की ओर ले जाता है। दूसरा, कंपोनेंट सीमाएं, कपलिंग और ग्रैनुलैरिटी के माध्यम से मॉड्यूलरिटी। लेखक कंपोनेंट आधारित सोच को आर्किटेक्ट के प्रमुख कार्यों में रखते हैं। कंपोनेंट केवल कोड की डायरेक्टरी या तकनीकी परत नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियों का ऐसा समूह है जिसकी सीमा समझने योग्य हो और जिसे अपेक्षाकृत स्वतंत्र रूप से बदला जा सके। इस सीमा को तय करने में डोमेन, डेटा, व्यवहार, टीम की जिम्मेदारी और परिवर्तन के संभावित कारणों को साथ देखना पड़ता है। पुस्तक कपलिंग और कोहिजन को इसी संदर्भ में रखती है। उच्च कोहिजन का अर्थ है कि कंपोनेंट के भीतर की जिम्मेदारियां एक स्पष्ट उद्देश्य से जुड़ी हों। कम कपलिंग का अर्थ है कि एक कंपोनेंट बदलने पर दूसरे कंपोनेंटों में अनावश्यक परिवर्तन ना करना पड़े, लेकिन लेखक इन्हें केवल नारे की तरह नहीं लेते। कभी साझा डेटा, लेन देन की जरूरत या प्रदर्शन के कारण संबंध जरूरी हो सकता है। इसलिए लक्ष्य हर संबंध हटाना नहीं, बल्कि उसके प्रभाव को समझना और नियंत्रित करना है। ग्रैनुलैरिटी का प्रश्न भी इसी से जुड़ता है। बहुत बड़े कंपोनेंट परिवर्तन को कठिन बनाते हैं, जबकि बहुत छोटे कंपोनेंटों की संख्या, संचार और संचालन का बोझ बढ़ा सकते हैं। पुस्तक इस संतुलन को विशेष रूप से उपयोगी बनाती है, क्योंकि यह माइक्रोसर्विसेज को स्वतः श्रेष्ठ नहीं मानती। पहले स्पष्ट मॉड्यूलर सीमा बनाना आवश्यक है, चाहे अंतिम तैनाती एक मॉड्यूलर मोनोलिथ हो या स्वतंत्र सेवाओं का समूह। तीसरा, आर्किटेक्चर शैलियों का चयन। लोकप्रियता नहीं, बल्कि संदर्भ के आधार पर पुस्तक लेयर्ड, मॉड्यूलर मोनोलिथ, पाइपलाइन, माइक्रोकर्नेल, सर्विस बेस्ड, इवेंट ड्रिवन, स्पेस बेस्ड, ऑर्केस्ट्रेशन ड्रिवन सर्विस ओरिएंटेड और माइक्रो सर्विसेज जैसी प्रमुख शैलियों का तुलनात्मक आधार देती है। इसका उपयोग किसी शैली को सार्वभौमिक समाधान घोषित करने में नहीं, बल्कि उसकी शक्तियों, सीमाओं और उपयुक्त परिस्थितियों को पहचानने में है। लेयर्ड आर्किटेक्चर स्पष्ट विभाजन और परिचित संरचना दे सकता है, लेकिन कठोर प्रतिबल लाभ या प्रदर्शन में रुकावट बन सकती है। मॉड्यूलर मोनोलिथ एक ही तैनाती इकाई रखते हुए मजबूत आंतरिक सीमाएं दे सकता है, जिससे वितरित प्रणालियों की परिचालन जटिलता से बचा जा सके। इवेंट ड्रिवन शैली ढीले जुड़ाव और असमकालिक प्रसंस्करण में लाभ दे सकती है, परंतु डेटा संगति, संदेश क्रम और अवलोकनीयता को कठिन बनाती है। माइक्रो सर्विसेज स्वतंत्र तैनाती और अलग स्केलिंग का अवसर देती है, लेकिन नेटवर्क विफलता, वितरित डेटा, परीक्षण और संचालन की लागत भी लाती है। लेखक का चयन ढांचा, आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, डेटा आवश्यकताओं, टीम की क्षमता और परिचालन परिपक्वता को साथ रखता है। इस तरह शैली चुनना किसी प्रचलित नाम को अपनाना नहीं, बल्कि उन समझौतों को स्वीकार करना है जो किसी विशेष व्यावसायिक और तकनीकी संदर्भ में सबसे उपयुक्त हो। चौथा, निर्णय, जोखिम विश्लेषण और डायग्रामिंग को आर्किटेक्चरल संप्रेषण बनाना। एक सक्षम आर्किटेक्चर तभी उपयोगी है जब उसके निर्णय कारण और परिणाम टीमों द्वारा समझे जा सके। पुस्तक आर्किटेक्चरल निर्णयों को स्पष्ट रूप में दर्ज करने पर जोर देती है, ताकि यह पता रहे कि कौन सा विकल्प चुना गया, किन बाधाओं में चुना गया और कौन से ट्रेड ऑफ स्वीकार किए गए। ऐसा रिकॉर्ड भविष्य में निर्णय बदलने, नई टीम के आने या किसी समस्या की जांच करने में संदर्भ देता है। लेखक जोखिम विश्लेषण को भी केवल अंतिम समीक्षा नहीं मानते। जोखिम वहां पैदा होता है जहां कोई कैरेक्टरिस्टिक महत्वपूर्ण है लेकिन उसे पूरा करने के प्रमाण कम है, या जहां डिजाइन में ज्ञात अनिश्चितता मौजूद है। जोखिम को जल्दी पहचानने पर टीम प्रोटोटाइप, परीक्षण, चरणबद्ध कार्यान्वयन या वैकल्पिक योजना बना सकती है। डायग्रामिंग का विषय इसी व्यावहारिकता से जुड़ता है। आर्किटेक्चर आरेख का उद्देश्य सजावटी चित्र बनाना नहीं, बल्कि किसी खास श्रोता को आवश्यक स्तर पर संरचना, संबंध, प्रवाह और जिम्मेदारी समझाना है। डेवलपर को कंपोनेंट संबंध चाहिए हो सकते हैं, संचालन टीम को तैनाती और संचार मार्ग, जबकि व्यावसायिक हितधारक को क्षमता और निर्भरता का सरल दृश्य चाहिए। पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि आरेख, निर्णय रिकॉर्ड और जोखिम चर्चा मिलकर साझा समझ बनाते हैं। यह साझा समझ तकनीकी दिशा बनाए रखने और गलत धारणाओं से उत्पन्न महंगे पुनर्कार्य को घटाने का साधन है। अंत में आर्किटेक्ट की भूमिका में टीम टोपोलॉजी, नेतृत्व और आधुनिक संचालन। पुस्तक आर्किटेक्ट को केवल तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में नहीं देखती। आर्किटेक्चर का सफल कार्यान्वयन टीमों की संरचना, संवाद, स्वामित्व और व्यावसायिक प्राथमिकताओं पर भी निर्भर है। इसलिए इसमें प्रभावी टीमों, सहयोग, वार्ता, नेतृत्व और प्रस्तुति कौशल को तकनीकी विषयों के बराबर स्थान मिलता है। आर्किटेक्ट अक्सर ऐसी स्थिति में होता है जहां उत्पाद की गति, जोखिम, लागत, संचालन और दीर्घकालिक रखरखाव की मांगें टकराती है। उसका काम आदेश देना नहीं, बल्कि विकल्पों और उनके परिणामों को स्पष्ट करके सहमति बनाना है। टीम टोपोलॉजी का महत्व यह है कि संचार की वास्तविक सीमाएं अक्सर प्रणाली की सीमाओं को प्रभावित करती है। यदि जिम्मेदारियां अस्पष्ट है तो अच्छी तकनीकी योजना भी उपेक्षित इंटरफेस और धीमे निर्णयों में बदल सकती है। दूसरा, आधुनिक पक्ष क्लाउड, डेटा और जेनरेटिव एआई का है। पुस्तक इन्हें अलग फैशन की तरह नहीं, बल्कि आर्किटेक्चरल निर्णयों को प्रभावित करने वाले कारकों की तरह रखती है। क्लाउड संसाधनों की लचीलापन और प्रबंधित सेवाएं देता है, पर लागत, निर्भरता और संचालन संबंधी फैसले भी मांगता है। डेटा की सीमाएं और स्वामित्व कंपोनेंट डिजाइन को बदलते हैं। जेनरेटिव एआई के संदर्भ में भी आर्किटेक्ट को प्रयोगशीलता के साथ नियंत्रण, गुणवत्ता और शासन पर विचार करना पड़ता है। इस व्यापक दृष्टि से आर्किटेक्चर सामाजिक और परिचालन वास्तविकताओं से जुड़ता है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन डेवलपरों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो केवल फीचर निर्माण से आगे बढ़कर प्रणाली स्तर पर निर्णय लेना चाहते हैं। साथ ही नए और अनुभवी आर्किटेक्टों, तकनीकी लीडरों तथा इंजीनियरिंग प्रबंधकों के लिए भी प्रासंगिक है। पाठक को किसी एक तैयार ब्लूप्रिंट के बजाय एक निर्णय ढांचा मिलता है। वह सीखता है कि अपेक्षित गुणवत्ता गुणों को कैसे पहचाना जाए, कंपोनेंट सीमा कैसे सोची जाए, उपयुक्त शैली के लिए किन ट्रेड ऑफ पर विचार हो और निर्णयों को टीमों तक कैसे पहुंचाया जाए। इसका व्यावहारिक लाभ यह है कि तकनीकी चर्चा अधिक सटीक बन सकती है। उदाहरण के लिए, माइक्रो सर्विसेज अपनाने की इच्छा को स्वतंत्र तैनाती, डेटा स्वामित्व, परिचालन क्षमता और लागत जैसे ठोस प्रश्नों में बदला जा सकता है। इसी प्रकार मॉड्यूलर मोनोलिथ को पुराना या अस्थायी विकल्प मानने के बजाय एक वैध संरचनात्मक विकल्प के रूप में परखा जा सकता है। समान श्रेणी की अनेक पुस्तकें किसी एक पैटर्न, क्लाउड मंच या डिजाइन सिद्धांत पर केंद्रित रहती है। फंडामेंटल्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की अलग पहचान इसकी व्यापकता और संतुलन है। यह शैली, मॉड्यूलरिटी, मापन, जोखिम, संप्रेषण और मानवीय संयोग को एक ही पेशेवर अभ्यास के हिस्से मानती है। दूसरा संस्करण समकालीन विषयों को जोड़ता है, फिर भी इसका केंद्र स्थिर रहता है, यानी संदर्भ के अनुसार स्पष्ट, तर्कसंगत और जांचे जा सकने वाले आर्किटेक्चरल निर्णय। इसलिए यह संदर्भ पुस्तक के साथ साथ आर्किटेक्चरल सोच विकसित करने का उपयोगी आधार भी है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं मील फॉर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।